ओम शांति। आज का बहुत सुंदर विषय है सफलता के लिए सहन शक्ति। सफलता के लिए सहन शक्ति, इस सीजन में बाबा की रिवाइज मुरलियां चल रहे हैं। आठ ग्रुप थे, उसमें से छह मुरली चल चुकी और ये जो मुरलियां चल रही, बहुत ही सुंदर मुरलियां चल रही। जैसे बच्चों की परीक्षा होती है, नजदीक आती है तो टीचर पढ़ाता नहीं है, लेकिन जो पढ़ाया है उसके अंदर जो इम्पोर्टेंट बातें हैं, जो परीक्षा में आने वाली बातें हैं, टीचर क्या करता है, उस लेसनों को दोबारा रिवाइज करता है। इसी तरह भले बाबा का अवतरण नहीं हुआ, लेकिन तो भी बाबा की जो पढ़ाई हुई बातें हैं, जो हमने सुनी थी लेकिन फिर भी हमारे जीवन में नहीं है और बहुत इंपॉर्टेंट थी, उन मुरलियों को दोबारा सुनाए जा रहे हैं, क्योंकि वो हमारे जीवन में नहीं है और ये हमारे परीक्षा में आने वाली बातें हैं, बड़ी इंपॉर्टेंट बातें हैं। जैसे पहली बाबा की मुरली चली थी, बाबा ने कहा कि बच्चे बहुत मेहनत करते हैं, लेकिन जब उनके खाते देखा तो खाते में जमा नहीं है, क्यों, मैपन, अभिमान। इसीलिए बाबा ने कहा कि ज्वाला स्वरूप योग से इस मयपन के पूछ को आग लगा दो। ये मयपन ब्राह्मणों में टकराव पैदा करता है, है देवताएं, है महान आत्माएं, लेकिन मयपन के कारण हमें उनकी कमजोरियां दिखती है, हमें कभी क्रोध आता है। इसलिए बाबा ने कहा ये मयपन, इससे मुक्त बनो। दूसरी थी, बाबा ने कहा कि इतनी सारी बातें सुनाने के बाद भी कई बच्चे कारण लगाते, कारण ये हुआ ये हुआ, ऐसा वैसा व्यर्थ, तो ये व्यर्थ से मुक्त बनो, कारणों का निवारण करो, समस्याओं का समाधान करो, वाह वाह के गीत गाओ, ऐसा वैसे के गीत नहीं गाओ, क्योंकि इसमें ज्यादा टाइम जाता है, कारण सुनने का क्वेश्चन करने का समय नहीं। नो क्वेश्चन, नो करेक्शन, नो कोटेशन, नो अपोजिशन, मन चुप। और भी मुरली चली थी, समाप्त का वर्ष मनाओ, अपनी सीट को फिक्स करो, स्नेह में खो जाओ, कई ऐसी बाबा की बहुत सुंदर इस सीजन की मुरलियां चली और अभी भी चली बाबा की मुरली। दुनिया में शिवरात्रि कैसे मनाते हैं और आपको कैसी मनानी है। बाबा ने कहा कि बर्थडे मनाने के लिए आए हो तो कुछ तो गिफ्ट देके जाएंगे, और गिफ्ट देंगे तो बाबा से लेंगे भी। तो बाबा ने कहा खास तो क्रोध के ऊपर अटेंशन दिलाया, क्रोध, ये क्रोध हमारे पुरुषार्थ में विघन रूप में है, और क्रोध बहुत सूक्ष्म है, और भी विकार हैं, लेकिन क्रोध, क्रोध पता भी नहीं चलता। हम कहते वैसे तो हम गुस्सा नहीं करते, लेकिन अगर किसी से नफरत है, घृणा है, वैर है, ये भी एक क्रोध के रूप है। इसलिए बाबा ने कहा कि ब्रह्मचारी, तो इस क्रोध को खत्म, क्योंकि जहां क्रोध है वहां शांति नहीं है, जहां क्रोध आए वहां वायुमंडल खराब है, जहां क्रोध आए वहां तनाव टेंशन है, जहां क्रोध है वहां मानसिक बीमारी है, शरीर की भी बीमारी है। जहां क्रोध है वहां मतभेद है, निर्णय शक्ति नहीं, परखने की शक्ति नहीं, क्रोध से पुण्य नष्ट हो जाते हैं। जहां क्रोध है उसके बुद्धि में ज्ञान नहीं बैठेगा। इसलिए क्रोध से मुक्त, और जहां क्रोध है वहां सम्मान में नहीं टिक सकेंगे, स्वधर्म में टिक नहीं सकेंगे। और हमारा जो लक्ष्य है, हमारी जो सफलता है क्या है, हमारा मंजिल है अशरीरी बनना, विधेयी बनना, बिंदुरु बनना, बीजरू बनना, बाप समान बनना, यह हमारा पुरुषार्थ का लक्ष्य है। लेकिन इस लक्ष्य तक पहुंचने के लिए, सफलता प्राप्त करने के लिए, ये क्रोध बहुत हमें क्या करता है, विघ्न रूप में आता है। जिसको क्रोध आएगा इस मंजिल तक नहीं पहुंचेगा, ना वो अशरीरी बन सकता है, ना विधेयी बन सकता है, ना बिजरू बिंदुरू बन सकता है। अगर संगम युग में हम बिंदुरू नहीं बने, बिजरू नहीं बने, अशरीरी नहीं बने, आत्माभिमानी नहीं बने, तो सत्युग में देवता कैसे बनेंगे, नहीं बन सकेंगे। इसलिए हमें अगर सफलता प्राप्त करनी है, लक्ष्य तक जाना है, इस क्रोध को हमें क्या करना है, क्रोध के ऊपर जीत प्राप्त करनी है। क्योंकि जो क्रोध करता है उसके संकल्प बहुत तेज चलते हैं। जिसके ऊपर क्रोध करेगा कई दिन तक वो भूल नहीं सकता, कई जन्मों तक भी वो बातें उसकी याद रहेगी क्रोध वाले की। इसीलिए हमें क्रोध से मुक्त बनना, और उसके लिए सबसे अच्छा हथियार है सहन शक्ति। क्रोध को जीतने के लिए सहन शक्ति, सहन शक्ति से ही हमें सफलता मिलेगी। क्योंकि क्रोध करने से टाइम वेस्ट हो जाता है, कई हम चढ़े हुए सीढ़ी को उतर जाते हैं। इसीलिए क्रोध से नहीं, लेकिन शीतलता, सहनशील बनकर के हम आगे बढ़ना है, न कि अभी पीछे आना है। सहन करना कायरता नहीं है, क्रोध करना कायर है, सहन करना बहादुरी का काम है। लोग बोलेंगे तुमने गलती की इसीलिए तुम चुप रहे, कोई बात नहीं बोलने दो, लेकिन आपको क्रोध को पी लो। उस बातों को तब आपके अंदर, क्योंकि सहन शक्ति बड़ी बहन है, हमारी शक्ति अष्ट है, अष्ट में से सहन शक्ति बड़ी बहन है। और जहां बड़ी बहन है वहां बाकी उसकी सात बहनें भी साथ में आएगी। अगर आप सहन करेंगे बाकी अष्ट शक्ति अभी आएगी, निर्णय शक्ति आएगी, परखने की शक्ति आएगी, सामना करने की शक्ति आएगी, सहयोग शक्ति आएगी, सारी शक्ति आएगी आपके अंदर। सहन करेंगे तो गुस्सा करेंगे शक्तियां भाग जाएगी, आपको शक्तियां सहयोग नहीं देगी। आपको उस समय लगा बस इसको मैंने गुस्सा किया मेरा मन शांत हो गया, लेकिन आपका तो मन शांत हो गया उसी समय, लेकिन कई दिन तक आप अशांत रहेंगे, निर्णय नहीं कर पाएंगे, धड़कनें बढ़ जाएगी, कई मानसिक बीमारियां हो जाएंगी, कई प्रॉब्लम्स आएंगे, योग भी नहीं लगा सकेंगे, सोमान में भी नहीं रह सकेंगे, बाबा को याद भी नहीं कर सकेंगे। गुस्सा करने से मन भारी हो गया, भारी मन ऊपर उड़ नहीं सकेगा। इतना नहीं, बुद्धि में परमधाम स्पष्ट दिखाई नहीं पड़ेगा, क्योंकि बुद्धि के ऊपर निगेटिव संकल्प चलने से, क्रोध करने से बुद्धि का जैसे आईने के ऊपर अगर धूल आती है चेहरा दिखता ही नहीं, इसी तरह क्रोध करने से हमारी बुद्धि का नेत्र बंद हो जाता है। परमधाम के बजे वो व्यक्ति दिखता है जिसके ऊपर क्रोध किया, वही दिखाई पड़ेगा, बाबा दिखाई नहीं पड़ेगा। इसलिए सहनशील बनो, और जब सहन करेंगे तो सात शक्तियां और आएगी, अष्ट शक्तियां, अष्ट शक्ति आएगी तो दैवी गुण भी आएंगे, क्योंकि शक्तियों के बच्चे हैं दैवी गुण। एक एक शक्ति के तीन तीन चार चार बच्चे हैं। जब सहन शक्ति आएगी उसके साथ में उसके चार बच्चे आएंगे, कौन से? शांति, एकाग्रता, एकरस, अंतर्मुखता। तो हर शक्ति के चार चार बच्चे हमारे जीवन में, कितने सारे गुण आएंगे, शक्ति आएंगी, और एक दिन आएगा हम सफल बनेंगे। अशरीरी बनना इजी होगा, बिंदु बनना इजी होगा, योग लगाना इजी होगा। इसीलिए अगर सफलता प्राप्त करनी है, जीवन में सक्सेस बनना है, सहनशील बनो। हमारा जो जितना जो ये ज्ञान है, टोटल जो विस्तार है, ड्रामा रिपीट होता है, जो हुआ अच्छा हुआ, कर्मों की खुई गति, ये सब किसी लिए है? ये सब कुछ हमें सहन करने के लिए है। इतना सारा ज्ञान मिला तो भी मुझे सहन नहीं होता, इसका मतलब उस ज्ञान को समझा ही नहीं। कई कहते मेरा बच्चे पति सुनता ही नहीं ना मेरी, भाई आपकी कैसी सुनेगा? जैसे नाटक होता है, नाटक में डायरेक्टर क्या करता है, हर एक को स्क्रिप्ट देता है लिखत, तुम्हारे ये डायलॉग आए। अब कोई डायलॉग कर रहा है, दूसरा एक्टर कहे कि ये नहीं करो, तुम ये नहीं बोलो, वो कहे कि मैं क्या करूं, मेरी लिखत ही है। इसी तरह ये संसार भी नाटक है, और इसी नाटक में पति की स्क्रिप्ट अलग आई, बच्चे की स्क्रिप्ट अलग आई, पड़ोसी की स्क्रिप्ट अलग आई, जैसे स्क्रिप्ट है वो बोल रहे, डायलॉग कर रहे। हम कहते मेरी सुनता ही नहीं, अगर गाली भी दी तो क्या कहो, आपने बहुत अच्छा पार्ट बजाया, क्योंकि गाली देने का उसका पार्ट था। जब ये ज्ञान स्पष्ट होगा तो कोई गाली भी देगा तो अच्छा लगेगा, बुरा नहीं लगेगा, सहन शक्ति आएगी। इसीलिए ये टोटल ज्ञान आए सहन करने के लिए। जब कोई कुछ भी बोलता है, विघ्न डालता है, अगर हम सहन करते हैं तो मन हमारा हल्का रहेगा, मन चुप रहेगा, और जिसका मन चुप रहता है योग लगाएगा। अगर सहन शक्ति नहीं है, किसी ने कुछ बोला है, निगेटिव विचार चल रहे, योग में बैठेंगे, लाल लाइट चल रहा है, गीत बज रहा है, शुरू करेगा मैं आत्मा हूं शांत, फिर कहेंगे मेरे को क्यों बोला, फिर कहेंगे ठीक है मैं आत्मा हूं, फिर कहेंगे 15 दिन पहले भी बोला, फिर कहेंगे शांत स्वरूप, फिर कहेंगे सबके बीच में क्यों बोला, योग कहां लगेगा? सफलता कैसे मिलेगी? इसलिए सहन शक्ति की देवी बनो, सहन शक्ति की देवता बनो। एक पत्थर भी सहन करके मूर्ति बनता है, लोग उसको भगवान कहते हैं, देवी कहते हैं। एक पत्थर भी सहन करके देवी बन गई, तो आप सहन करके देवी देवता नहीं बन सकते? जरूर बन सकते हैं। क्रोध करके देवी देवता नहीं बनेंगे, सहनशील बन करके बन सकते। इसलिए सहन करने की शक्ति, चलो 2 मिनट, जो सबके अपने अपने गीत बजते हैं आजकल। बात चल रही थी, हमें सहन शक्ति को अपनाना है। सहन शक्ति एक कवच है, अगर हम सहन करते हैं एकाग्रता आएगी, धैर्यता आएगी, गुण आएंगे। राजा कभी भी अकेला नहीं चलता, राजे के साथ में क्या चलते हैं, मंत्री चलता है, प्रजा चलती है। अगर राजा के ऊपर कोई अटैक भी करता है तो वो सब संभल लेते हैं। इसी तरह अगर भविष्य के राजा बनना है तो हमारे साथ में क्या चाहिए, दैवी गुण और दैवी शक्तियां। लेकिन किसके साथ में रहेगी, जो सहनशील है। अगर सहन शक्ति नहीं, थोड़ा भी निगेटिव सोचा, सहन शक्ति हमारे पास क्यों नहीं रहती, क्योंकि हम जो निगेटिव सोचते हैं, ये क्यों हुआ, ऐसे कैसे हुआ, मेरे साथ क्यों हुआ, अगर ये क्वेश्चन आ रहे हैं, इसका मतलब ज्ञान को समझा नहीं, कर्मों की गुहिकृति को समझा नहीं, ड्रामा को समझा नहीं। क्वेश्चन आए, क्यों क्या शुरू हुआ, जिसने किया उसके लिए नफरत आएगी, घृणा आएगी, गुस्सा आएगा, और जहां गुस्सा है गुण शक्तियां चली गई। इसीलिए लोग मुझे साथ दे या ना दे, ये गुण और शक्तियां मुझे साथ दे, एक दिन आएगा हम सफल बन सकेंगे, सक्सेस बन सकेंगे, मंजिल तक पहुंच जाएंगे। तो इसीलिए अगर जीवन में सफल बनना चाहते हैं, जो हमारी मंजिल है कौन सी, अशरीरी बनने की, विधेयी बनने की, बिंद्रु बिजरु बनने की, ये संगम युग की हमारी मंजिल है, वहां तक पहुंचना है। इसलिए सहन शक्ति का सहारा लेना है, तब हम क्रोध मुक्त बन सकेंगे, थोड़ा भी आवेश भी नहीं आएगा, शांत मूरत बन सकेंगे। क्रोध वाला कभी शुभ भावना नहीं दे सकता, शुभ कामना नहीं दे सकता, आशीर्वाद नहीं दे सकता, वो बद्दुआ ही देता रहेगा, वो देवता कैसे बनेगा। इसलिए देवता बनने के लिए क्रोध मुक्त बनना जरूरी है। इसीलिए बाबा ने ये गिफ्ट मांगी है, इसीलिए ये गिफ्ट पूरा दे के चले जाना, लेके नहीं जाना साथ में, अन्यथा कभी क्रोध आएंगे, फेल हो जाएंगे लास्ट के, क्योंकि हमारे परीक्षा में लास्ट में ये सब बातें आने वाली है, क्योंकि अंतिम जन्म है, कई जन्मों के हिसाब किताब के रूप में आएंगी बातें सामने, प्रकृति के रूप से आएंगी, लेकिन तो भी चुप। राजा हरिचंद्र की कितनी परीक्षा हो गई उसकी, क्रोध नहीं किया। तो इसी तरह हमारी भी परीक्षाएं होगी, लेकिन तो भी सहनशील बनना। जितना सहनशील बनेंगे सोमान में टिक सकेंगे, कर्म योगी बन सकेंगे। इतना ही नहीं, रात में सोए हैं तो भी योग लगेगा। आजकल हेल्थ में भी प्रॉब्लम क्यों आ रहे हैं, क्रोध करने से, क्योंकि जो क्रोध करता है उसके थॉट्स ज्यादा चलते हैं, और जिसके थॉट्स ज्यादा चलते हैं दिमाग गर्म होता है। इसीलिए कहते हैं ना, जिसका पाव गर्म, पेट नरम, दिमाग ठंडा, उस घर में कोई डॉक्टर है उसको मार दो डंडा। पांव को कैसे रखो गरम, पेट को नरम, दिमाग को ठंडा। लेकिन आजकल उल्टा होता है, पांव रहते ठंडे और दिमाग रहता है गरम। क्यों, सहन शक्ति नहीं है। इसलिए शीतला बनना है, शीतल देवी बनना है, शीतल देवता बनना है। इसलिए सहन शक्ति जरूरी है, तब हम सफल बन सकेंगे। अभी आजकल कितने सारे प्रॉब्लम्स, मुझे तो कुदरती जेलों में सेवा करने का मौका मिला तो कभी कभी मैं पूछता हूं इसमें से क्रोध करके गुस्सा करके कौन कौन आया, जब पूछता हूं तो काफी आधे अपराधी तो गुस्से वाले होते जेलों में आजकल। एक सेकंड का क्रोध पूरा जीवन नरकमय बन गया। वो पढ़ा लिखा था, इतना पढ़ाई किया लेकिन क्रोध पर कंट्रोल नहीं किया, नौकरी गई, इज्जत गई, सब कुछ गया। अभी मैं गया था इधर कोयम्बटूर, तो वहां की बहनों ने मुझे कहा, फैक्ट्री वाला मालिक था उससे मिलने के लिए लेके गए, बहुत बड़ी फैक्ट्री, कपड़े की फैक्ट्री थी। फैक्ट्री जब देखा मैंने सोचा इतना बड़ा फैक्ट्री का मालिक कितना सुखी प्राणी है। जब घर देखा तो घर भी बड़ा आलीशान, सोफा सेट, उनका ड्राइंग रूम, ये सब देख करके मुझे लगा अभी भी स्वर्ग भी जैसे बैठा है। तो फिर बातें होने लगी तो उसकी आंखों में आंसू आने लगे बातें करते करते। मैंने सोचा सोफा सेट इसकी इतनी अच्छी है, ड्राइंग रूम इतना अच्छा है, वो खुद ही अपसेट है, वो सोफा सेट से उसको क्या शांति मिलेगी, कहां सुख मिलेगा, और दुखी है। सुनाने लगा 8 दिन से मैं बिल्कुल जैसे टूटा हूं, पति पत्नी का कुछ हो गया, वो छोड़ के चली गई, नौकरानी खाना बनाते, एक छोटा बच्चा था उसको भी छोड़ के गई, और इस टेंशन से 8 दिन से मेरे अंदर इतनी बीमारियां भर गई, लगता ये जीवन नरक में बन गया। कहता 2 दिन पहले सुसाइड करने के लिए चला गया, ऊटी की घाटी से मैं सोचा कि मैं नीचे एक गाड़ी कार लेके अकेला चल पड़ा, किसी को बताया नहीं, लेकिन दूर दूर तक गए कोई किसी को टक्कर मारने वाला मिले ही नहीं। तो आखिर एक ट्रोला आ गया, वो होता है ना लंबा सा ट्रोला, सोचे कि उसको टक्कर मारूं, लेकिन वो ड्राइवर होशियार था, उसने क्या क्या टर्न कर दिया, ये नीचे गिर गया नीचे, बहुत बड़ा पत्थर था वो पत्थर के बाजू में गिर गया, लेकिन उसको हुआ कुछ नहीं। कहते भगवान ने क्यों बचाया मुझे कुछ समझ में नहीं आया। हमने कहा आपको बहुत बड़ा वो वर्षा देना चाहता है, उसका अपना परिचय देना, वो ये परिस्थिति ना आती तो आज हम लोग आपसे मिलते नहीं। तो ये सब क्रोध से परिस्थितियां, तो इसीलिए बाबा कहते बच्चे क्रोध मुक्त बनो। तो हम क्रोध से मुक्त कैसे बने, सहनशील कैसे बने, क्यों क्रोध आता है? अभिमान के कारण क्रोध आता है, अभिमान। अब कईयों को अभिमान होता है, कर्तापन का अभिमान, मैं करता हूं। कभी कभी भाई लोग भी हमारे क्रोध करते हैं, क्यों? अब खाना खा रहे, खाना में कोई नमक कम बढ़ गया, थोड़ा टेस्टी नहीं बना, थाली को फेंक देंगे गुस्से से, कहते मेरी कोई कदर नहीं करता, मैं ना होता तो घर ना चलता, मैं ना होता तो दुकान ना चलता, मेरी कोई कदर नहीं करता। उसको लगता है मैं है इसलिए घर चल रहा है, मैं है इसलिए अपी चल रहे, ये एक अभिमान है, मिथ्या अभिमान। जैसे पहले जमाने में गांव में जब हम लोग थे तो बैलगाड़ी कभी लेके जाते थे खेती में, जब छोटे थे तो कभी कभी बैलगाड़ी के नीचे पाला हुआ जो कुत्ता था वो चलता था, लेकिन कभी कभी वो कुत्ता क्या करता था, सामने वाला कोई कुत्ता आता था उसके ऊपर टूट पड़ता था, झगड़ा करता था, क्यों? उसको लगता है कि इतनी बड़ी बैलगाड़ी मैं खींच रहा हूं और तुम मेरे रास्ते में क्यों आ रहे? तो क्या कुत्ता बैलगाड़ी खींच रहे? वो तो नीचे खाली चल रहे हैं, बैल के इसके ऊपर बोझ है उसका गाड़ी का, ये तो उसका एक मिथ्या अभिमान है। इसी तरह कईयों को लगता हम दुकान चला रहे, घर चला रहे, हम ये कर रहे, सेंटर चला, हम कुछ नहीं कर रहे, कराने वाला ऊपर से करा रहे, हम चले जाएंगे तो भी सेंटर चलेगा, घर चलेगा, सब कुछ चलेगा। इसलिए अगर मुझे गुस्सा आता है तो इसका मतलब मेरे अंदर ईगो है, अभिमान है। अभिमान वालों को फीलिंग आती है, गुस्सा आता है। इसलिए क्यों अभिमान है? मैं दो प्रकार के हैं, एक होता असली मैं आत्मा मैं, और दूसरा होता है नकली मैं ये हूं मैं हूं। इसलिए जिसको असली मैं का कॉन्शियस नहीं है, ये नकली मैं के कॉन्शियस में रहता है, उस स्वरूप में चलेगा और उसको लगता है मैं इतना करता हूं, मेरे वो इन्होंने ऐसा करना चाहिए। जो आत्मा मैं के कॉन्शियस में रहता है उसको ईगो नहीं आएगा, निरहंकारी होकर रहेगा। इसलिए अभिमान से मुक्त बनना, जितना अभिमान से मुक्त बनेंगे, सहनशील बनेंगे, क्रोध मुक्त बनेंगे, इसलिए कभी नहीं सोचना कि मैं ये हूं। वास्तव में अगर हमारी कोई इज्जत भी करता है, हमें सम्मान भी कोई देता है, क्यों देता है? हमारे साथ में कौन है? बाबा है। अगर हमारे साथ बाबा ना होता, एक के साथ जीरो है तो उसकी वैल्यू बढ़ जाती है, अगर जीरो ना होती तो वैल्यू नहीं बढ़ती। एक व्यक्ति ने उनके पास एक गधा था, तो अचानक उन्होंने मकान शिफ्ट कर दिया, तो गधे के ऊपर बिठा करके सब सामान लेके गया, लेकिन उनके पास एक मूर्ति थी बड़ी सी। अब सोचा ये इतनी जाड़ी मूर्ति कैसे क्या करें, वो भी क्या क्या गधे के ऊपर रख दिया, थोड़ा सा ढक दिया, फिर भी शीर खुला था। जब रास्ते में जा रहे थे लोग नमस्ते करते उसको मूर्ति देख करके, तो गधे को लगता है मेरे को ही देख करके लोग नमस्ते करना शुरू कर दिए। तो वास्तव में नमस्ते किसको कर रहे थे? वो मूर्ति को देख करके गधे को नमस्ते नहीं कर रहे थे। अब इसी तरह कईयों को लगता है कि मेरी महिमा हो रही है मेरा, नहीं, हमारे साथ बाबा जुड़ा हुआ है, हमारे साथ हमने ब्याज पहना है, ओम शांति वाले, कोई हम क्लास अच्छा करते हैं, कोई हम ये है वो, इसीलिए नहीं कर रहे। इसीलिए बाबा कहते बच्चे अभिमान ना हो, निरहंकारी होकर रहो, और जितना जो निरहंकारी है क्रोध मुक्त सहनशील। इसीलिए गीता में भी कहा है मान अपमान निंदा स्तुति में भी समान रहो। वो स्थिर योगी बन सकता है। इसलिए अगर सफलता प्राप्त करना है सहन शक्ति के लिए मैंपन से मुक्त। दूसरी बात है, अगर हमें सहन शक्ति को धारण करना है, अगर कोई विघ्न डालता है, समस्या निर्माण करता है, उसको क्या समझो? अपना टीचर। वो टीचर है मेरा। विघ्न डालने वालों से भी पाठ सीखो तो आपको कभी भी क्रोध नहीं आएगा, आपके अंदर सहन शक्ति आएगी। मेरे जीवन के कुछ अनुभव मैं आपको अब सुनाता हूं। पहले मैं शुरू में यहां शांतिवन में क्लास कराता था, तो मेरे पास एक ही टॉपिक था, तो ये निरंतर योगी कैसे बनने, तो उसके अंदर मैं एक बैंगन का एग्जांपल हमेशा देखता था। माताएं जब क्लास में आती हैं, तो किसी ने अगर वो सब्जी बनानी रास्ते में देखा कि बैंगन की सब्जी, तो जब योग में बैठेंगे वो बैंगन याद आता था, तो मैं मेरे सुनाता था बार बार वही एग्जांपल, वही क्लास, बड़ा मुझे अच्छा लगता था वो टॉपिक सुनाता था। जब क्लास करके मैं जब डाइनिंग हॉल में जाता था, तो कुछ भाई लोग मेरे को चिढ़ाते थे, तो मैं कोई और टॉपिक नहीं आते, तो वही टॉपिक बोलते रहते हैं ये बैंगन का। तो कई लोगों को कहते थे अरे आप इतना अच्छा क्लास किया, भाई बहनों ने तो ताली बजाई, बहुत अच्छा लगा उन लोगों को। देखो आप उस टेबल पर नहीं बैठो, निंदा करते हैं ना आपके, लेकिन मैं जानबूझकर के वहां बैठता था, वो क्या क्या बोलता था वो सुनता था, और जब क्लास करता था मैं सोचे थे वो टॉपिक नहीं, दूसरा इस बारी करेंगे, क्योंकि वो लोग भी सुन रहे होंगे। ऐसे करके मैंने चिंतन करते करते आज मेरे पास 150-200 टॉपिक हो गए। बहुत सारी भट्टियों में जाते क्लासेस। अगर वो मेरी निंदा ना करते आज मैं आगे कहां बैठता, इतना सारा पूरा भारत में जाकर भट्टियां कराने। तो इसीलिए संत कबीर ने बोला, निंदक नीरे राखिए आंगन कुटी छवाए। जो निंदा करता है वो सही आपका असली दोस्त है। अभी भी जो निंदा करते, जब मैं कहीं बाहर से आता हूं, जब मैं उनके पास जाता हूं, वो कुछ बोलते हैं तो बड़ा अच्छा लगता है मुझे, क्योंकि वही मेरे टीचर्स हैं। तो मैंने तो अपने जीवन में जो निंदा करते हैं, जो महिमा करता है उससे पास मैं कम जाता हूं, जाता ही नहीं। महिमा करते वहां से निकल जाता हूं। ग्लानी सुनना अच्छा लगता है। जो ग्लानी सुनना सीखता है उसके अंदर ऑटोमेटिकली सहन शक्ति आती है। अगर आईना हमारे चेहरे पर दाग दिखाता है, आईने को फोड़ के फेंकते हैं, अपना दाग मिटाते हैं। तो निंदक क्या करता, हमारी जो बुराई है वो देखता है और कोई फीस भी नहीं लेता, बिना फीस के हमको बताता है, तो कितना अच्छा है विचार। और महिमा करने वाला क्या करता है, कुछ काम निकालने के लिए, तुम तो बहुत अच्छे हो और ये तुम तो ऐसे हो, है ही नहीं अच्छे, उसको कुछ काम निकालना है, इसीलिए महिमा करके अपना काम निकाल के जाता है। तो हमें लगता है सचमुच मैं अच्छा हूं, हम सोचते हैं सचमुच अच्छा, पुरुषार्थ बंद कर लेते हैं। तो महिमा करने वाला हमारा कौन हुआ, दुश्मन हुआ, और ग्लानी करने वाला कौन हुआ, मित्र हो गया। मैंने तो इस पाठ को पक्का किया, जो निंदा करते हैं वो हमारे असली मित्र है, तब सहन शक्ति आएगी। एक बार मैं जब दिल्ली में रहता था तो शुरू में मुझे हिंदी भाषा भी इतनी अच्छी नहीं आती थी, तो ज्यादा मैं योगी करता था, मैं ज्ञान कम सुनाता था। तो कभी कभी लगता था, बाबा हमेशा मुरली में कहते थे, बच्चे जो सुनते हो औरों को सुनाओ, एक और, लेकिन मैं तो नहीं सुनाता था। तो कभी फिर मेरे को उमंग आया कि मैं क्या करता था, संडे के दिन में वहां भी किचन में सेवा करता था, तो कुछ लोगों को बुला करके सुनाना शुरू करता था। तो एक बार सुनाना शुरू किया संडे के दिन, तो कुछ आधा एक घंटा, तो एक बहन ने मेरे को देख लिया, तो वो कुमार जाने के बाद फिर मेरे को बुलाया कि आप लोग 3-4 मिल करके क्या कर रहे थे। मैंने कहा मैं ज्ञान सुना रहा था, ये तुम्हारा काम नहीं है, तुम्हारा काम है किचन में करछी चलाने का, वही करो, बाकी और कुछ नहीं करना, उसके लिए हम लोग बैठे हैं। अब कितना ये लगना चाहिए, वो बहन जी मेरे से ईर्ष्या करे, पता नहीं उसको गुस्साना चाहिए। मैंने कुछ नहीं बोला, मैंने सोचा इनकी कोई गलती नहीं, मेरे पास ज्ञान का स्टॉक नहीं है, इसीलिए बाबा शायद मुझे चांस नहीं दे रहे, आज से सुनाना ही नहीं, स्टॉक बढ़ाना है पहले। तो मैं जब तक वहां रहा 6-7-8-9 साल तक, रोज बगीचे में बैठता था, गमले के सामने बैठ करके सोचता था, माताएं बैठी है, यूथ बैठे हैं, कुमार बैठे हैं, रोज उनको सुनाना शुरू किया। 6-8 साल तक मैं रोज आधा घंटा गमलों को ज्ञान सुनाता था। उसके बाद मेरी ट्रांसफर यहां हो गई, इधर आ गया, तो इधर भी मैं किचन में सेवा करता था। किचन की सेवा होने के बाद बगीचे में जाता था, वहां तपस्या धाम में, वहां भी कुछ गमले पड़े रहते थे, समझाई माताएं बैठे, वहां भी ऐसा बैठ करके करता था। तो वहां धीरे धीरे माताएं आना शुरू हुई, भाई जी आप यहाँ बैठे कुछ सुनाओ ना, तो मुझे डर लगता था यहाँ भी कोई बोल ना दे, तो मैं कहता नहीं भाई यहाँ नहीं, ऐसे ऐसे करते बहुत ज्यादा ही बोलने लगे। तो मैं तपस्या धाम के बिल्कुल पीछे जहां कोई देखे ना, वहां मैं सुनाना शुरू किया। सुनाते सुनाते कई दिन तक हो गए, एक दिन शांतामन दादी ने मेरे को देख लिया, तो मेरे को बुलाया, कहते भगवान भाई तुम रोज यहाँ क्लास करते हो, ऐसा क्लास तो दादी मीटिंग हॉल में क्या करूं। तो मैं बोले ठीक है दादी, तो वहां किया, वहां करते करते यहाँ कॉन्फ्रेंस हॉल में, डायमंड हॉल में, आज पूरा भारत में 900 जेलों में, 6000 स्कूलों में लेक्चर करते करते रिकॉर्ड बना दिया। तो वो बहन मेरे लिए गुरु बन गई, टीचर बन गई। अगर वो मुझे ऐसा ना बोलती शायद आज वो सीखता नहीं। तो विघन डालने वाले हमारे असली मित्र है। तो जिसके अंदर ये भावना जागृत होगी उसके अंदर सहन शक्ति आएगी और वो उसे सीखेगा, वो सफल बनेगा। मेरे जीवन में सक्सेस का आधार मैंने सहन शक्ति को अपना साथी बना दिया। कुछ भी हो जाए तुरंत मन को समझाता हूं, हे मन तुम चुप रहो, इससे कुछ जरूर लेसन मिलने वाला है, तुम सोचो नहीं। विघ्न डालने वालों ने बहुत विघ्न डाले लेकिन वही विघ्न मेरे लिए वरदान बन गए, उसी विघ्नों ने मुझे पीछे नहीं किया लेकिन क्या हुआ, सफलता तक लेके गए। एक एक जीवन का विघ्न सफलता प्राप्त करने का साधन बन गया। इसीलिए किसको बनेगा, जो उस विघ्नों के बारे में पॉजिटिव सोचता है, पॉजिटिव मतलब सहन करता है, निगेटिव सोचेगा, विघ्न डालने वालों के प्रति नफरत करेगा, करना करेगा, उसका परचिंतन करेगा, गुस्सा करेगा, तो वही विघ्न उसके लिए नरक बन सकता है, वही विघ्न उसके लिए, विघ्न एक प्रकार की हमारी परिस्थिति परीक्षा होती है, परीक्षा से आगे बढ़ते हैं, लेकिन कौन, जो सहन करता है, जो पॉजिटिव लेता है। ऐसे एक बार मेरे को मन में आया कि मुझे कुछ लेख लिखने, आर्टिकल लिखने हैं, तो मैंने एक जिंदगी का पहला लेख लिखा, रात को 10 बजे शुरू किया, लिखते लिखते 2 बज के, फिर बाद में उसको दोबारा अच्छी थोड़ा ध्यान से पढ़ा, फिर उसको दोबारा लिखा 4 बज के, उसको समेट करके मैं अमृतवाला यू किया, फिर किचन में गया, 10 बजे फोटोकॉपी करने वाले के पास लेके गया, मैंने कहा इसको थोड़ा फोटोकॉपी करो, उसने ऊपर नीचे देखा, गुस्से से फाड़ करके कचरे में फेंका, कहते तुम लेखक बनने के लिए, सेवा करने के लिए आए, अब कितना गुस्सा आना चाहिए, रात भर जाकर लिखा, 2 थप्पड़ लगाना चाहिए, मैंने कुछ नहीं बोला, बाहर गया ऊपर देखा, मैंने सोचा लेखक जरूर बनूंगा, तब से लिखना शुरू किया, लिखते लिखते आज 40 मैगजीन में लिखता हूं, 3000-2000 से भी ज्यादा लेख लिख चुका हूं। तो वो मेरा गुरु हो गया, भाषण सिखाने वाला एक गुरु हो गया, आर्टिकल लिखने। तो इसीलिए परिस्थिति को क्या समझो, परिस्थिति निर्माण करने वालों को शिक्षक समझो, तब आपके अंदर सहन शक्ति आएगी, आप क्रोध मुक्त बन सकेंगे। ऐसे ही एक बार मन में आया कि वो किसी ने कहा कि आप इतनी सारी स्कूलों में कार्यक्रम करते हैं, इसके फोटो तरह इंटरनेट में डाल तो बहुत अच्छा है, मेरी तो पढ़ाई 5 क्लास हो गई, मुझे इंटरनेट वगैरह कंप्यूटर नहीं आता है, 5वीं से 10वीं तक पढ़ाई किया, तो मैंने कुछ फोटो एक सीडी में डाला, एक भाई के पास लेके गया, मैंने कहा भाई जी मेरा थोड़ा फोटो कहीं इंटरनेट में डाल देना, कहते तुम तो पाई पैसे के आदमी, तुम किचन में काम करने वाले, तुम्हारी फोटो इंटरनेट पे थोड़ी होती, तो मुझे लगा ये इंटरनेट क्या होते है? मुझे उसको सीखना है, जबकि पढ़ाई कुछ नहीं की, लेकिन मुझे उस घटना से लगा कुछ सीखना है, और करते करते आज सीखा, मेरा लैपटॉप आ गया, आज गूगल में यूट्यूब में भी के भगवान सर्च करो, बहुत सारे वीडियोस, 900 वीडियोस, बहुत सारे क्लासेस, बहुत सारे ब्लॉग्स, क्या क्या बनाया पता नहीं, और इतनी सारी सेवा हो रहे हैं। तो कहने का मतलब, जो परिस्थिति निर्माण करता है उस समय सहन करके शांत रहता है, वही परिस्थिति उसको आगे, लोगों ने मुझे मारे पत्थर, उसी पत्थर को लेकर के मैंने सफलता की सीढ़ी बनाई, जीवन में आगे बढ़ते गए। बिना सहन करते कोई बड़ा नहीं बन सकता। आज दुनिया में भी जितने लोग बड़े बने, कैसे बने, उन्होंने सहन किया, लेकिन आज हमें वो सहन नहीं होता, क्रोध आता है, इसलिए परिस्थिति निर्माण करने वालों से सीखना है क्रोध मुक्त। क्रोध क्यों आता है, कभी कहते हैं मैं इसके रास्ते में कभी जाती नहीं, मैंने इसका कुछ बुरा किया नहीं, फिर भी ये मेरे साथ ऐसी क्यों करते, तब मुझे गुस्सा आता है, और कुछ नहीं। ताली कभी एक हाथ से नहीं बजती, ताली के लिए कितना चाहिए, 2 चाहिए। अगर आपके साथ कोई ऐसा वैसा कर रहे हैं, इसका मतलब आपने भी कभी किया है। अगर दोनों का पिछला जन्म दिखाया जाए तो आपने उसके साथ क्या क्या किया था, आपको ही शर्म आएगी। इसीलिए अगर आपको कोई, समझो किसी को पति तंग कर रहा है, अब किसी को सास तंग कर रहे हैं, क्यों तंग कर रहे हैं, आपने भी कभी किया था। इस कर्मों के घुई गति को याद रखो, आपको गुस्सा नहीं आएगा। कोई कहते ज्ञानी होते भी ऐसे करते, अरे आपने भी कभी राजा बन करके उसको राजा ही से निकाला होगा, बड़ों की कंप्लेन की होगी, कुछ ऐसा वैसा व्यवहार किया होगा, और वो ज्ञानी बन करके आपका व्यवहार अब आपके आसपास के जितने लोग हैं, चाहे पति है, बच्चे है, पड़ोसी है, ये सब पिछले जन्मों के कर्मों को तृप्त करने वाले लोग हैं। कोई आपको देने के लिए है, कोई आपसे लेने के लिए। जिन्होंने इस घुई गति को समझ लिया उसके अंदर सहन शक्ति आएगी, क्रोध मुक्त बनेगा। समझो चलते चलते किसी ने गाली दी, जिसको कर्मों का ज्ञान है वो क्या सोचेगा, अच्छा है इसका भी बहुत दिन का बाकी था, पूरा हो गया। तो ऑटोमेटिकली सहन शक्ति आएगी। अब कई सेंटर पर आते हैं, अब समझे कभी देरी हो गई, कुछ हुआ, अब घर में तो ज्ञान में कोई चलता नहीं, जाते कहीं कि ओम शांति में जाते हैं, वहीं जाकर रहो, वही खाना खाओ, वापिस क्यों आए, अब यहां तो इतनी अच्छी मुरली सुनी और जाते ऐसी बातें सुनेंगे तो तुरंत क्या हो जाएगा, क्या आप भी नहीं जाते, क्या पशु गुस्सा कहीं यही सिखाए ओम शांति में, क्या फायदा। तो आप जब जाएंगे तो क्या करो, उसके निगेटिव बात को क्या बना दो, पॉजिटिव। अब मैं जाते ही मेरी पूजा हो जाएगी, और पूजा संगम युग में कोई थाली लेकर नहीं गए ओम शांति में गए करके, वो था पूजा करते करते वो थके हुए, अब आपकी पूजा होगी अपमान के, निंदा से, गुलामी से। अगर कोई ऐसा करता है तो क्या करो, आशीर्वाद दो। आशीर्वाद मतलब हाथ से नहीं दो, नहीं तो और चिढ़ जाएंगे, बड़ी देवी बन के आई उनको मन से दुआएं दो, बाबा इनको सद्बुद्धि दे देना, बाबा शुभ भावना दो, परिवर्तन हो जाएंगे। निगेटिव बात को क्या बना दो, पॉजिटिव। कभी कभी गुस्सा आता है, कोई आपका परचिंतन करेगा और उसी में से कोई आकर के आपको बताता है, अरे तुम्हारा टॉपिक निकाल करके आधा घंटा तक तुम्हारे बारे में क्या क्या बोल रहे थे, उस किसी से आकर के किसी ने आपको बताया। अब वो परचिंतन करने वालों को आपको दुआई थोड़ी निकलेगी, गुस्सा आएगा ना, मेरा परचिंतन किया, उसको परचिंतन नहीं समझो, मेरा इन्होंने कीर्तन भजन गाया। कीर्तन भजन में दो चार जन इकट्ठे होते, एक जन टाल बजाता है, एक जन डपला बजाता है, एक जन गाता है, दो चार जन सुनते हैं, उसको कहते हैं कीर्तन भजन। संगम युग में आपके जो परचिंतन करेंगे वही द्वापर में क्या करेंगे, उसी शहर में जन्म लेंगे जहां आपका मंदिर बना हुआ है, जिसने कहा था कि है ही ऐसी, वो कहे क्या कहेगी, हे देवी तुम बड़ी महान हो, जिसने हाँ में हाँ मिला तो ढोल बजाएंगे, सुनाता वो कीर्तन सुन करके ये हो जाए, भावना अच्छी बनाएंगे। तो भजन कीर्तन वाले चाहिए ना। निगेटिव को क्या बना दो, पॉजिटिव। जो निगेटिव को पॉजिटिव बनाना जानता है क्रोध मुक्त बनेगा, सहन शक्ति आएगी। अब बच्चे ने ग्लास गिराया, टूट पड़ेगा तेरे प्रति, तुमके कोई कदर नहीं है, गुस्सा किया, हार्ट में प्रॉब्लम होगा, 1.5 लाख रुपए का ऑपरेशन करना पड़ेगा, ग्लास था 10 रुपए का, ऑपरेशन करना पड़ा 1.5 लाख। इसीलिए ग्लास टूटा क्या फटाफट जुड़ जाएगा गुस्सा करने से, इसीलिए गुस्सा नहीं, सहनशील बनो। बस स्टैंड पर चली गई, बस गई, कितना क्या क्या सोचेंगे, लेकिन नहीं, जो हुआ अच्छा हुआ, हो सकता है उसमें कुछ हो सकता है, इसीलिए अच्छा हो गया बच के। पॉजिटिव सोचो, पॉजिटिव सोचने वालों के अंदर सहन शक्ति आएगी, और जिसके अंदर सहन शक्ति आएगी, जो हमारी मंजिल है कौन सी, अशरीरी बनने की, विधेयी बनने की, बिंद्रु बनने की मंजिल तक पहुंचेंगे, हम जीवन में सक्सेस बन सकेंगे। अगर सक्सेस बनना है तो ये सहन शक्ति बहुत जरूरी है। जिन्होंने संगम युग में सहन करना सीख लिया वही सफलता प्राप्त करेगा। उसके लिए एक तो दो चार बातें मैंने शॉर्ट में सुनाई, एक तो पहली बात बताई, मैंपन से मुक्त, दूसरी बात बताई कौन सी, विघ्न डालने वालों को उसे अपना टीचर समझो, विघ्नों से पाठ सीखना। तीसरी बात बताई नेगेटिव को क्या बना दो, पॉजिटिव। चौथी बात बताई कर्मों की घुई गति को याद रखो। आज शिव बाबा निराकारी, शिव बाबा ने सबसे ज्यादा सहन किया है। कई कहते मुझे सहन तब नहीं होता जिसका मैंने भला किया, वही मेरे लिए जब बोलते हैं तब मुझे गुस्सा आता है। जिस बाबा ने हमको पढ़ाया, देवी देवता बनाया, उनके लिए हमने उनकी ग्लानी की, कुत्ते में बिल्ली में, तो भी बाबा ने क्या किया, सहन किया। इतना ही नहीं, ये नहीं सोचे जब मैं नीचे जाऊंगा जिन्होंने ग्लानी की उनको देवता कभी नहीं बनाऊंगा, नए लोगों को ढूंढूंगा। सोचा जब ऊपर से आता है ग्लानी करने वालों को क्या करता है, गले लगाता है, आपकारी पर उपकार करता है। बाबा केवल ज्ञान सुनाता नहीं, बाबा ने किया है। जब बाबा ने किया तो हमें भी करना है। तब जैसे बाबा इतना महान बना, जितना जिसके अंदर सहन शक्ति की क्वालिटी ऊंची उतना वो महान बनता है। इसीलिए बड़ा बनने के लिए सहना है, और सहन करेंगे तो क्रोध ऑटोमेटिकली खत्म हो जाएगा। इसीलिए क्रोध मुक्त बनने से हम सम्मान में रह सकेंगे, सदा खुश रह सकेंगे, हर्षित रह सकेंगे, देवताओं के गुण हमारे अंदर आ जाएंगे। लोग आजकल ज्ञान नहीं सुनेंगे, आपका हर्षित चेहरा, खुद चेहरा देख करके लोगों को लगेगा उसको कुछ मिला है। क्योंकि आजकल सबके जीवन में प्रॉब्लम बहुत है, प्रॉब्लम वाला का चेहरा खुश नहीं रहता। इसीलिए बाबा ने कहा बच्चे चेहरे को म्यूजियम बना दो। तो इस वर्ष में विशेष हमें ये अटेंशन देना है, सदा खुश रहना है, तो आपका हेल्थ भी अच्छा रहेगा, वेल्थ भी अच्छा रहेगा, हैप्पी रहेंगे, और साथ में अशरीरी बिंदुर बिजुर भी बनेंगे, जीवन में सफलता प्राप्त करेंगे, सहन शक्ति से सफलता। ठीक है, ओम शांति।